पृष्ठ संख्या 16। एदो नगर को टोक्यो नाम देकर उसे राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। 1869 में क्षेत्रीय प्रशासन को एकीकृत रूप दिया गया तथा समुरायों की पदवियों को कम करने के साथ साथ उन्हें सादा भी बना दिया गया। 1869 के हानसिकी होकन यानी भूमि पंजिकाओं की वापसी तथा 1871 के हायहान चिकेन यानी जागीरों का अंत और राज्यपद अधिकारों की स्थापना एबोलिशन ऑफ फिफ्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफेक्चुअर्स के द्वारा देश के राजनीतिक एकीकरण की प्राप्ति ने सामंतवादी प्रणाली का ही अंत कर दिया। क्षेत्रों के आकार को युक्तिसंगत बनाकर उन्हें राज्यपद अधिकारों में बदल दिया गया तथा दायमियों के स्थान पर राज्यपालों की नियुक्ति की जाने लगी। इस प्रकार जागीरों का उन्मूलन राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण की ओर आवश्यक कदम था। मेजी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक कदम 1872 का भूमि की बिक्री से प्रतिबंध हटाना था। आधुनिक भूमिकर की दिशा में यह एक ऐसा कदम था जिसने कम से कम कानूनी तौर पर कृषक वर्ग का उद्धार कर दिया। अब कृषक को अपनी भूमि से बांध कर नहीं रखा जा सकता था। अब वह पारिवारिक नामों का प्रयोग कर सकता था। उसे भूमि के अधिकार पत्र टाइटल टू लैंड भी मिल गए। अब उसे घूमने फिरने के साथ साथ व्यवसाय की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार कृषकों पर सामंतों फ्यूडल लॉर्ड्स और जमींदारों लैंडलॉर्ड्स का नियंत्रण काफ़ी कम हो गया। सामंती जापान में कर चावल के रूप में अदा किए जाते थे। अब चावल अर्थव्यवसाय राइस इकोनॉमी के स्थान पर मुद्रा अर्थव्यवस्था मॉनेटरी इकोनॉमी ने जन्म ले लिया और करों का नकद भुगतान किया जाने लगा। ऐसी व्यवस्था में इस तथ्य को भी मान्यता मिल गई कि कर अदाकर्ता स्वयं ही भूमि का वास्तविक स्वामी है। पहले समुदायों को दिए जाने वाले वेतनों को कम कर दिया गया, फिर उन्हें पेंशन में बदल दिया गया। 1876 में वे बंध पत्रों में बदल दिए गए। अब जापान का सामंत क्षत्रिय रईस टेरिटोरियल मैग्नेट न रहकर औद्योगिक रईस इंडस्ट्रियल मैग्नेट में परिवर्तित हो गए। वस्तुतः साथ ही यह भी भुलाया नहीं जा सकता कि रूढ़िवादी तथा अशिक्षित किसान पुनः स्थापन का मुख्य उद्देश्य तो कहाँ समझ पाए, बल्कि उसकी कदर भी ना कर सके। वे तो शायद अकेले छोड़े जाने में ही संतुष्ट रहते। उन्होंने हर एक परिवर्तन का शक और संदेह के साथ स्वागत किया तथा सरकार के उद्देश्यों को बहुधा गलत समझा। अनिवार्य सैनिक भर्ती को रक्त कर ब्लड टैक्स के रूप में लिया गया। स्कूलों में पाश्चात्य विषय वस्तु के लागू किए जाने को झूठी निष्ठा फल्स रिलीजन और जादूगरी सॉर्सरी का प्रचार समझा गया तथा पारिवारिक तथा परिवार पंजीकरण प्रणाली फैमिली रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू होना, बच्चों और औरतों को दास्ता में बेचने का प्रारंभ समझा गया। तथापि कृषकों द्वारा चलाया गया विरोध समय की गति के आधार पर भूमि कर कम होने तथा शक्तिशाली प्राधिकरण की स्थापना हो जाने के कारण कम होता गया। मेजी सरकार के सैनिक सुधारों मिलिट्री रिफॉर्म्स में भी पुनः स्थापन का सामंत विरोधी स्वभाव प्रदर्शित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक एवं कुशल सेना संगठन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की एक अत्यधिक आवश्यकता के रूप में परिकल्पना की गई। समुराय वर्ग का सैनिक सेवा पर एकाधिकार मोनोपोली ओवर मिलिट्री सर्विस सामंतवादी प्रणाली का न केवल एक स्मृति प्रतीक था, बल्कि सामंतवादी प्रथा की उन्मूलन में एक गंभीर अड़चन भी था। 10 जनवरी 1873 को लागू किया गया अनिवार्य भर्ती कानून कंस्पिरेशनल लॉ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैनिक परिवर्तन था। अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद सभी मर्दों को 3 वर्षों के लिए सक्रिय सैनिक सेवा करनी पड़ती थी और उसके तुरंत बाद 4 वर्षों तक आरक्षित बल में अपना नाम देना होता था। यद्यपि 1 दशक पूर्व चोशु की मिश्रित टुकड़ियों में सामान्य स्वयंसेवकों के प्रयोग द्वारा ऐसे सुधार का श्री गणेश किया जा चुका था। व्यापक अनिवार्य भर्ती यूनिवर्सल कॉन्स्पिरेशन संभवतः जापान के आधुनिकीकरण में सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम था। लगभग 3 शताब्दियों तक सामान्य लोगों कॉमनर्स को तलवार तक रखने के अधिकार से वंचित करके रखा गया था। समुदायों और सामान्य लोगों के बीच इस प्रकार के कार्यात्मक विभाजन पर ही वर्ग विभाजन आधारित था। अब शस्त्रविहीन कृषक अचानक एक विस्तृत पूर्णतः केंद्रित और आधुनिक सैनिक प्रणाली एक्सपेंडेड इंटायरली सेंट्रलाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री सिस्टम का आधार बन गए। निसंदेह धारणा को संपूर्ण रूप में लागू करने में कई वर्ष लगे, लेकिन धीरे धीरे इसने एक वास्तविकता का रूप ले लिया तथा सरकार ने सारे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कर्मचारी वर्ग के असंतोष को, जो नए विचारों और नई समस्याओं के पुराने व्यावसायिक आदर्शों और पूर्व धारणाओं पर प्रभाव से उत्पन्न हुआ और जिससे पुनः स्थापन के बाद व्यापक परिवर्तनों का रूप लिया, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकारी नीतियों के प्रति विरोध का उत्पन्न होना अवश्यंभावी था। कुछ जमींदारों की आधुनिक राज्य के विरुद्ध रोष की भावना अस्पष्ट बढ़ती जा रही थी। जिन लोगों ने पुनः स्थापन को अतीत की ओर प्रत्यावर्तन फूको को दृष्टिकोण से समझा, उन्होंने सरकारी नेताओं की आधुनिक मनोवृत्तियों को घोर आशंका की नज़र से देखा। उन्होंने कई बार अपने विरोध को हिंसा के साथ व्यक्त किया। कुमामोतो जागीर के प्रतिभाशाली समुराय की 15 फरवरी 1869 को हत्या कर दी गई। उसे अपने उन विचारों के लिए मौत का निशाना बना दिया गया जो उसने प्रशासन में सैन्य अर्थात दूसरी श्रेणी का कर्मचारी होने के नाते व्यक्त किए थे। कई दूसरे जिनमें ओमूरा, मासुजीरो, हिरोजावा, शानेओमी, मोरी अरिनोरी तथा ओकुबा तोशीमीची के नाम शामिल है, भी उन्हीं कारणों से और उसी प्रकार से मार दिए गए। तदांतर सामंतवाद के समर्थकों ने विगत और अप्रचलित सामंती प्रणाली को कायम करने का एक अंतिम प्रयास किया। उनकी धारणा थी कि विदेशी युद्धों द्वारा बेरोजगार समुदायों को पुनः काम मिल जाएगा। वह पुराने शासन एंशियंट रिजीम के अन्य पहलुओं के साथ साथ सामंती सैन्य गुणों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 1870 के दशक के आरंभ में कोरिया के विरुद्ध एक सैनिक अभ्यास की जोरदार मांग की। यद्यपि उनकी मांगें मानी नहीं गई, सरकार ने उनका रोष कम करने के लिए 1874 में ताइवान के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा। यह अभियान ताइवान के आदिवासियों द्वारा रिवक्यू मच्छेरों की हत्या के प्रतिशोध के रूप में किया गया, लेकिन इस प्रकार का सीमित सैनिक अभियान समुरायों की परेशानी का समाधान न कर सका। प्रथम समुराय विद्रोह हिजेन में जनवरी 1874 में प्रारंभ हुआ और फिर चोसू में मसबारा इससेई की गड़बड़ी शुरू हो गई। अंत में सुलगता असंतोष एक गंभीर विद्रोह जिसे विशाल सत्सुमा विद्रोह के नाम से जाना जाता है के रूप में फैल गया। इस विद्रोह का दमन एक भव्य और खूनी संघर्ष के बाद ही किया जा सका। जापान को सामंती दशा की ओर वापस ले जाने और नई व्यवस्था के विरुद्ध यह अंतिम शक्तिशाली प्रयास था। विद्रोहियों को परास्त करने के पश्चात मेजी नेताओं ने सत्सुमा और चोसू अधिकारियों की मिलीजुली सरकार के अंतर्गत और नए नए पुनः स्थापित शाही परिवार के तत्वाधान में केंद्रित सरकार के अंतिम संस्थानीकरण का कार्य निर्भीक होकर करना प्रारंभ कर दिया। यह घटना अपने में स्वयं इस तथ्य के लिए एक पर्याप्त प्रमाण है कि मेईजी सरकार स्वभाव से ही सामंतवाद विरोधी थी। साम्राज्यवादी शक्तियों की भूमिका, जिन्होंने अपनी उपस्थिति जापान में पहले से ही अनुभव करवा दी थी, कम नहीं की जा सकती। कुछ हद तक मेईजी पुनः स्थापन पाश्चात्य साम्राज्यवाद की धमकी के विरुद्ध एक संरचनात्मक प्रतिक्रिया, प्रोटेक्टिव रिएक्शन अगेंस्ट वेस्टर्न इंपेरियलिस्ट थिएटर के रूप में उत्पन्न हुई। तोकुगाओ को हटाने के बाद मेजी नेताओं का अधिकतर ध्यान जापान पर थोपी गई असमान संधियों को समाप्त करने की ओर लग गया। इस प्रकार यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मेजी कालीन परिवर्तन कुछ हद तक साम्राज्यवादी धमकी के अधीनस्थ हुआ। इसने स्पष्टतः जापान की प्रतिक्रिया को विशेष रूप में निर्धारित एवं निर्देशित किया। 1889 तक जापान में समस्त शक्तियों ने अतिरिक्त देशीय अधिकार त्याग दिए थे। 1902 का एंग्लो जापानी सहबंध, जो समान स्तर पर संपन्न हुआ था, ने और भी स्पष्ट कर दिया कि जापान ने पश्चिमी शक्तियों के साथ समानता प्राप्त कर ली थी। आगे उसकी सैनिक शक्ति की सफलता ने आक्रामक विदेश नीति का रूप ले लिया। 1894 से 95 के चीनी जापानी युद्ध में विजय, 1900 के बॉक्सर आंदोलन में हस्तक्षेप और 1904 से 5 के रूसी जापानी युद्ध में विजय के बाद जापान ने न केवल राष्ट्र परिवारों फैमिली ऑफ नेशंस में एक समान एवं महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त की, बल्कि वह एक विश्व शक्ति भी बन गया। लेकिन इस सब का यही मतलब नहीं कि जापानियों ने पाश्चात्य आदर्शों के लिए एक के बाद एक अपने परंपरागत विश्वासों एवं संस्थाओं को त्याग दिया। तथापि मेजी युग में जिस तरह का समाज बनकर सामने आया, उसे वस्तुतः पाश्चात्य नहीं कहा जा सकता। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि रेल मार्ग, जहाजरानी, तार और डाक सेवा, न्याय प्रणाली, औद्योगिक कारखाने, कृषि विधियां, फैशन आदि या तो सीधे पश्चिम से अपनाए गए थे या फिर पश्चिम से बहुत अधिक प्रभावित थे। तथापि जापानी वस्तुतः जापानी ही बने रहे। जो भी परिवर्तन लाए गए, अधिकांशतः वे अतीत के सांचे में गढ़े गए थे। उनमें जापानी परंपरा एक मजबूत तत्व के रूप में निहित थी, जैसा कि एक विद्वान ने दलील दी है। वस्तुतः यह एक अनोखी प्रकार की पाश्चात्य प्रभाव में रंगी जापानी उपज कुछ सीमा तक पाश्चात्य रूपों द्वारा बनाई गई थी, और कभी-कभी यह पाश्चात्य आत्मा की सहभागी बने, लेकिन मुख्यतः इसके मानसिक और दार्शनिक आधार जापानी थे, जो प्रधानतः जापानी ऐतिहासिक विचारों, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा जापान में प्रचलित परिस्थितियों से प्राप्त किए गए थे। इट वॉज पेकुलियरली जापानीज प्रोडक्ट कलर्ड बाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, शेप्ड इन होम रेस्पेक्ट्स बाई वेस्टर्न फॉर्म्स एंड ओकेजनली पार्टेकिंग ऑफ द वेस्टर्न स्पिरिट, बट इट्स इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन वेयर इन द मेन जापानीज डिराइव्ड प्रिंसिपली फ्रॉम जापानीज हिस्टोरिक आइडियाज, पोलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस विथ जापान। यह तथ्य इस दृष्टि से समझने लायक है कि अधिकांश मेजी नेता पुनः स्थापन के पूर्व सामंती वातावरण में पोषित हुए थे, जहां एक सरकारी पद्धति का संबंध है। 1889 के मेजी संविधान से लगता है कि सरकार ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिकार पत्र शपथ ने यद्यपि सामान्य शब्दावली में लोकमत पर आधारित सरकार का आश्वासन दिया था, तथापि यह राय राजगद्दी के गिने चुने अस्थायी सलाहकारों गैनरों की राय सिद्ध हुई। यह लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा नहीं बनाई गई थी, यह कुछ लोगों द्वारा बनाई गई सरकार अथवा अल्पतंत्र थी। यह शोगुनेत शासन अभिजात तंत्र से कोई अधिक भिन्न नहीं थी। वस्तुतः परंपरागत जापानी राजनीतिक सिद्धांतों को मेजी संविधान का आधार बनाया गया। निस्संदेह राजा को व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ दे दी गई थी। मेजी संविधान की आलोचना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह सम्राट की ओर से प्रजा के लिए एक उपहार, एम्पेरर्स गिफ्ट टू द पीपल था। राजनीतिक दल तो गठित किए गए, लेकिन वे सही मायनों में कभी भी वह शक्ति एवं प्रभाव प्राप्त न कर पाए जो उनके सहभागियों ने पश्चिम में प्राप्त किया। राष्ट्रीय सरकार की एकमात्र निर्वाचित संरचना प्रतिनिधि सभा समिति शक्तियों के कारण प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ रही। सैनिक नेताओं की प्रभावी स्थिति भी मेजी काल के पहले की देन मानी जाती है। यद्यपि जापान ने अपनी स्थल सेना और नौसेना का विकास पाश्चात्य ढंग से किया था, तथापि उनकी मानसिक दशा सामंती और मेजी पूर्व बनी रही। वस्तुतः इस घटना को जापान को शोगुन पूर्वकाल की ओर ले जाने के लिए दोषी ठहराया जाता है। धर्म भी राज्य का एक यंत्र बना दिया गया। पुनः स्थापन के प्रारंभ काल में शिंतो धर्म विभाग सरकारी विभागों में सबसे महत्वपूर्ण था। शिंतो धर्म, जिसने सम्राट के दैवी चरित्र और देशभक्ति पर जोर दिया, राज्य धर्म बन बैठा। जॉन किंग फेयरबैंक, आर राइश्योर तथा ए क्रेग जैसे विद्वान जापान के विकास का अधिकांश श्रेय उसकी पृथक्करण, सामंती समाज की परंपरा, धार्मिक विचारों में निहित निष्ठा, लक्ष्य आधारित राष्ट्रीयता तथा देश के छोटे आकार इत्यादि को देते हैं। जापान की स्वदेशी संस्थाओं की आंतरिक शक्ति के कारण ही मेजी नेता अधिकांश सुधारों की सफलतापूर्वक कल्पना करके उन्हें कार्यान्वित कर सके। इसके साथ साथ जिनगी कान अथवा शिंतो के लिए शासन को सरकारी संरचना में सैद्धांतिक तौर पर सर्वोच्च स्थान दिया गया। शिंतो को सरकारी अधिमान्य स्तर दिए जाने का एक मुख्य ऊंचा मंतव्य यह था कि ऐसा करने से शाही संस्था को लोगों की नजरों में उठाया जा सकता था और जापानी प्रजा में अंधाधुंध निष्ठा पैदा की जा सकती थी। सम्राट के दैवी चरित्र में विश्वास करना शिंतो सिद्धांत का अभिन्न अंग था। इस स्वदेशी विश्वास को सरकार द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई ताकि उसे संपूर्ण जापान में प्रेरणादायक एवं प्रभावी बनाया जा सके। जीबी सैनसम ने इस रीति का सफलतापूर्वक मूल्यांकन करते हुए कहा है, शिंतो को सरकारी धर्म के दर्जे तक उठा देने से सिंहासन और दरबारी अभिजात वर्ग सुदृढ़ होगा, जिसने जैसा कि हुआ एक सीधे शाही शासन का सुसंगत सिद्धांत प्रस्तुत किया। द एलिवेशन ऑफ शिंतो टू द पोजिशन ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्ट्राइन वुड फोर्टिफाई द थ्रोन एंड कोर्ट एरिस्टोक्रेसी प्रोवाइडिंग एज इट डिड ए कोहेरेंट थ्योरी ऑफ डायरेक्ट इंपेरियल रूल। राजनैतिक एकीकरण के गतिमय प्रभाव के परिणाम स्वरूप वंशानुगत तथा सामाजिक दर्जों का उन्मूलन, भूमि के बेचने खरीदने की खुली छूट, व्यवसाय तथा मेजी संवैधानिक व्यवस्था में निवास की स्वतंत्रता ने मेजी संवैधानिक व्यवस्था को भले प्रतिबंधित लेकिन वास्तविक प्रतिनिधि प्रणाली में बदल दिया। जैसा कि एमबी जेनसन ने कहा है, मेजी पुनः स्थापन को एक पूंजीवादी क्रांति के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसने स्वतंत्रता और विकल्प को बढ़ावा देकर तत्कालीन जापान की गतिशीलता का मार्गदर्शन किया। द मेजी रेस्टोरेशन कैन बी सीन एज ए कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन हुज इंक्रीज ऑफ फ्रीडम एंड चॉइस प्रिपेयर्ड द वे फॉर द डायनिज्म ऑफ कंटेम्प्रोरी जापान। इस प्रकार अंत में यह कहा जा सकता है कि मेजी नेताओं द्वारा अपनाई गई नीतियाँ स्वभावतः सामंत विरोधी थी तथा उन्होंने जापान को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यदि जापान को चीन जैसी दुर्दशा से बचाना है तो स्वयं में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना होगा, जो उसे अपने को औद्योगिक बनाना पड़ेगा तथा उस कार्य को केवल कुछ दशाब्दियों में पूरा कर लेना है, जिसे पाश्चात्य शक्तियों को करने में लगभग 2 शताब्दियां लगी। मेजी नेता जानते थे कि यदि इस लक्ष्य को पाना है तो सामंतवाद को जाना होगा। फलतः सामंतवाद को उनकी नीतियों में कोई स्थान नहीं दिया गया। प्रत्येक सुधार राजनैतिक, भूमि से संबंधित, सैनिक, सामाजिक और कानूनी ने जापान में सामंतवाद के कफन में एक नई कील ठोक दी। लेकिन इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेजी काल में परंपरागत जापानी समाज के कुछ तत्वों को पुनर्जीवित कर दिया गया, जिन्होंने नए जापान में महत्वपूर्ण कार्य किए।